दानियेल अध्याय 9। दानियेल की प्रार्थना। मेदिया वंश के अहश्वेरोश के पुत्र दारियावेश को बाबेल वासियों के राज्य का शासक ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले साल मैं दानियेल ग्रंथों से यिर्मयाह भविष्यवक्ता को दिए गए यहावे के वचन के अनुसार यह समझ गया कि यरूशलेम की निर्जनता 70 वर्षों तक रहेगी। अतः मैं टाट का वस्त्र पहने राख लगाए उपवास करते हुए प्रभु परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना और याचना करने लगा। मैंने यहावे अपने परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की और अपने पापों को माना। हे प्रभु, महान और अद्भुत परमेश्वर, आप उनके साथ अपने प्रेम की वाचा को बनाए रखते हैं जो आपसे प्रेम करते और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमने पाप और गलत काम किए हैं, हमने बुरे काम करके विद्रोह किया है, हमने आपकी आज्ञाओं और कानूनों को नहीं माना है, हमने आपके उन सेवक भविष्य वक्ताओं की बातों को नहीं सुना जिन्होंने आपके नाम से हमारे राजाओं, हमारे राजकुमारों और हमारे पूर्वजों और देश के सारे लोगों से बातें की। हे प्रभु, आप धर्मी हैं, परंतु आज हम बहुत लज्जित हैं। यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी और सब इज़राइली जो पास और दूर हैं, हमारे विश्वासघात के कारण आपने उन्हें सब देशों में तितर बितर कर दिया है। हे यहावे, हम और हमारे राजा, हमारे राजकुमार और हमारे पूर्वज बहुत लज्जित हैं, क्योंकि हमने आपके विरुद्ध पाप किया है। यद्यपि हमने आपके विरुद्ध विद्रोह किया है, तो भी हे प्रभु हमारे परमेश्वर, आप दयालु और क्षमाशील हैं। हमने यहावे हमारे परमेश्वर की बातों को नहीं माना है या उन कानूनों का पालन नहीं किया है जिसे उन्होंने अपने सेवक भविष्य वक्ताओं के जरिए हमें दिया था। सारे इज़राइल ने आपके कानून का उल्लंघन किया है और आपकी बातों को मानने के बदले उससे दूर हट गए हैं। इसलिए परमेश्वर के सेवक मोशे के कानून में लिखित शाप और ठहराया गया दंड हमारे ऊपर उंडेल दिया गया है, क्योंकि हमने आपके विरुद्ध पाप किया है। आपने हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति लाकर हमारे और हमारे शासकों के विरुद्ध कहे गए वचन को आपने पूरा किया है। आकाश के नीचे सारी पृथ्वी पर ऐसी विपत्ति और कहीं नहीं पड़ी जैसी विपत्ति यरूशलेम में पड़ी है। जैसा कि मोशे के कानून में लिखा है, ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, फिर भी हमने ना तो यहावे हमारे परमेश्वर का अनुग्रह पाने का यत्न किया है और ना ही अपने पापों को छोड़कर आपकी सच्चाई पर ध्यान दिया है। इसलिए यहावे हमारे ऊपर विपत्ति लाने में नहीं हिचकिचाए, क्योंकि यहावे हमारे परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उन सब बातों में वे धर्मीपन दिखाते हैं। तो भी हमने उनकी बातों को नहीं माना, और अब हे प्रभु हमारे परमेश्वर, जिसने अपने बलवान हाथ से अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया और अपने लिए एक नाम स्थापित किया जो आज तक बना हुआ है, परंतु हमने पाप किया है, हमने दुष्टता ही की है। हे प्रभु, आप अपने सारे धर्मी कामों को ध्यान में रखते हुए अपने क्रोध और कोप को यरूशलेम शहर से दूर करिए, जो आपका शहर और आपका पवित्र पर्वत है। हमारे पापों और हमारे पूर्वजों के अपराधों ने यरूशलेम और आपके लोगों को उन सबके सामने उपेक्षा का पात्र बना दिया है जो हमारे आसपास रहते हैं। अब हे हमारे परमेश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना और विनती को सुनिए। हे प्रभु, अपने हित में अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हमारे परमेश्वर, कान लगाकर सुनिए और आंख खोलकर उजड़े हुए उस शहर को देखिए जो आपके नाम से जाना जाता है। हम इसलिए विनती नहीं कर रहे हैं कि हम धर्मी हैं, पर इसलिए कि आप बड़े दयालु हैं। हे प्रभु सुन लीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु सुनिए और करिए। हे मेरे परमेश्वर, अपने ही हित में विलंब ना कीजिए, क्योंकि आपका शहर और आपके लोग आपके नाम से जाने जाते हैं। 77. जब मैं अपने पाप और अपने इज़राइली लोगों के पाप को मानते हुए बात और प्रार्थना कर रहा था, और यहावे मेरे परमेश्वर के सामने उसके पवित्र पर्वत के लिए विनती कर रहा था, जब मैं प्रार्थना में ही था, तब गब्रियेल, जिसे मैं पहले दर्शन में देख चुका था, शाम के बलिदान के समय तेज गति से मेरे पास आया। उसने निर्देश देकर मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुम्हें अंतर्दृष्टि और समझने की शक्ति देने आया हूँ। जब तुमने प्रार्थना करना शुरू किया, तभी एक आज्ञा दी गई, जिसे मैं तुम्हें बताने आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत सम्माननीय व्यक्ति हो, इसलिए इन बातों पर विचार करके दर्शन को समझ लो। तुम्हारे लोगों और तुम्हारे पवित्र शहर के लिए 77 ठहराए गए हैं कि वे अपराध करना छोड़ दें, पापों का अंत कर दें, दुष्टता का प्रायश्चित करें, अपने में सदाकाल का धर्मीपन लाए, दर्शन और भविष्यवाणी की बातों पर मुहर लगाई जाए और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। इस बात को जानो और समझ लो, यरूशलेम के फिर से स्थापित और पुनः निर्माण के लिए वचन के निकलने से लेकर अभिषिक्त जन शासक के आने तक 7 और 62 का समय ठहराया गया है। इसका पुनः निर्माण गलियों और एक खाई के साथ होगा, किंतु यह कठिन समय में होगा। 62 के बाद अभिषिक्त जन मार डाला जाएगा और कुछ न होगा। शासन करने वाले के लोग आकर शहर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देंगे। बाढ़ के समान अंत आ जाएगा, अंत तक युद्ध होता रहेगा और उजाड़ का निर्णय लिया जा चुका है। वह बहुतों के साथ एक साथ के लिए एक वाचा की पुष्टि करेगा। 7 के बीच में ही वह बलिदान और भेंट का अंत कर देगा और मंदिर में एक विनाशकारी घृणित वस्तु को स्थापित करेगा, जो उजाड़ का कारण होगा। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि ठहराए गए समय के अंत में उस पर यह विनाश ना उंडेल दिया जाए।